تو لا تلعن فرمایا فلا تکو فی میریت مما یعبد ہؤلاء، تو دیکھو تم شک میں نہ پڑ جانا اس میں، اس چیز میں شک میں نہ پڑ جانا جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا. کیسا شک؟ یعنی مشرقین جو عبادت کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے تمہیں شک نہ ہو. یعنی کبھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ اتنی ترقیاں کر رہے ہوں، ان کی بڑی جو جیسے چاہتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے، بڑا یہ اوپر جا رہے ہیں. اب ایسی چیز کو دیکھ کے جو ہم ظاہر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں نا، تو اس کو دیکھ کے کہیں شک نہ آ جائے کہ یہ پتہ نہیں، کبھی کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہی نہ ہو، یا ان کے جو جھوٹ ہے یہ جو شرک ہے سارا، اس میں کبھی شک نہ ہو آپ کو کہ یہ جھوٹ ہے. ظاہری کوئی واقعات دیکھ کے، یا ان کا غلبہ دیکھ کے، یا ان کا بڑھنا دیکھ کے، ان کا پھلنا پھولنا دیکھ کے، چاہے باطل جتنا مرضی زور پہ ہو، جتنا مرضی گرجے، شک نہیں ہونا چاہیے. چاہے ساری دنیا ایک طرف اللہ معاف کرے شرک میں پڑ جائے، غلط کاری میں پڑ جائے، اور ایک بندہ ہے جو توحید پہ، آپ آگے سورہ یاسین میں دیکھیں گے نا پوری قوم ایک طرف اور کہاں یہ ایک آدمی رجل مومن، تو ایک بندہ بھی ہے نا اگر ایمان پہ توحید پہ، تو وہ یہ کبھی نہ سوچے اگر یہ صحیح ہوتا تو اتنا پھر لوگ کیوں اس سے منہ موڑ کے شرک کر رہے ہیں، اگر توحید صحیح ہوتی. آئے پتہ نہیں، کیا پتہ ان کا صحیح ہو بات، کیونکہ یہ اتنے سارے تو بے عقل نہیں ہو سکتے. نہیں، آپ نہیں شک میں نہ پڑنا کبھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے اور پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ کفار اس زمانے میں بھی بڑے بڑے سردار تھے، اور بڑے ان کے پاس عیش و عشرت کے سامان تھے، اور بڑے پھلنے پھولنے والے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کافر کیسے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو، ان کے پاس کوئی دلیل ہے یا یہ بڑی کوئی فرم بیس ہے جس کے اوپر ان کا یہ عقیدہ کھڑا ہوا ہے. ہاں یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اصل میں تو ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو بس نہیں عبادت کرتے مگر ان کی جو ان کے آبا و اجداد نے ان کی جن کی عبادت کی اس سے پہلے، یہ تو بس وہ اندھا دھند وہی فالو کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. کوئی بیس ہی نہیں ہے ان کے دین کی. آپ دیکھ لیں شرک کی کوئی بیس نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تحقیق کر کے دیکھ لیں. یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ جی فلاں، اللہ معاف کرے، کچھ نیوز آئی انڈیا سے کہ بھائی کچھ کوئی مسلمان تھے جی وہ ہندو بن گئے یا یہ ہو گیا، وہ صرف مفاد کی خاطر، صرف مفاد کی. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہی لوگ میجورٹی میں ہیں، یہی لوگ حکومت میں ہیں، یا یہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یا مجھے اس کی وجہ سے کوئی فائدے مل جائیں گے اس وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس کے اندر بڑی دلیل دیکھی اور انہوں نے سوچا کہ ہاں بھائی یہ حق دین ہے، ایسا نہیں ہے. یہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، جن کو جہاں مفاد نظر آئے اس طرف لڑک جاتے. تو یہ نہیں عبادت کرتے، مگر جو باپ دادا کے، جو باپ دادا کر رہے تھے جو، اسی لیے تو پوچھے نا اگر، تو کہتے ہیں لوگ ہم کیا ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے ماں باپ دادا نے پوجا. شعیب علیہ السلام کو کیا کہا تھا لوگوں نے، کیا تم ہم اس سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کی؟ اور آج بھی ان کو بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمارا دین بڑا اینشنٹ دین ہے، بڑا پرانا دین ہے. تو یعنی پرانا یعنی باپ دادا سے لے کے چلا آ رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے، اور اس سے بھی پہلے. دیکھو جی یہ کون سی فخر کی بات ہے، یہ کون سی ایسی دلیل ہے. اب ہم کہنے شروع ہو جائیں ہمارا دین 1400 سال پہلے کا دین ہے، تو یہ دیکھو کتنا پرانا دین ہے، یہ تو کوئی بیس نہیں ہوتی. ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کہا. ایک مسلمان اس لیے نہیں یہ کہتا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پرانا ہو گیا تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے، بلکہ حق کی دلیل ہونی چاہیے. آپ کو اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کا، ثابت ہونا چاہیے اس کو. اور ان کے پاس چونکہ کوئی دلیل نہیں، اس لیے صرف یہ ہے کہ یہ پرانا ہے اس لیے. تو اگر پچھلے بے عقل تھے تو سارے آگے بے عقل چلتے گئے، وہ بھی یہی کہتے رہے ہمارے باپ دادا نے کیا، ہمارے باپ دادا نے کیا. آج تم نے کہہ دیا کہ ہمارے پچھلے ساری نسلوں نے کیا، یہی پوجا کی، یہی کیا، تو ہم اس لیے اسی پہ راضی ہیں. تو یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں بھی इस वजह से मुसलमान नहीं होना चाहिए कि हमारे बाप दादा चूंकि मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हैं। क्यों? आपको खुद पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, मैंने इस्लाम को क्यों अडॉप्ट किया, मैं क्यों मुसलमान हूं। सिर्फ ये कोई वजह नहीं है मुसलमान होने की कि मैं बच्ची मुसलमान घर में पैदा हुई इसलिए, ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई भी ऐसी बात नहीं। तो फिर ऐसी ही बात हो गई जैसे ये कह रहे हैं। हालांकि हमारे पास हक है और हमारे पास दलील है और हमारे हमारी बात सही है, फिर भी हमारे मुसलमानों को पता ही नहीं है इस्लाम क्या है, कुरान क्या कहता है। इसी वजह से वो बस वो आगे से अब मुसलमान क्यों है, क्योंकि हमारे तो घर वाले भी सारे मुसलमान हैं और कभी तहकीक करके नहीं देखते। तो कयामत के दिन तो वही इंसान निजात पाएगा जो रदीतु बिल्लाही रब्बन कहता होगा, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूं, मैं इस्लाम के दीन होने पे राजी हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे राजी हूं। इसीलिए तो जो इस कलमे को 3 दफा कहेगा अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन राजी कर देगा। वो भी राजी हुआ ना, तो कोई राजी कैसे हो सकता है? ठीक है, किसी कोई सुबह के बाद ये कलमा पढ़ लेता, उसको यही नहीं पता कि ये है क्या। आप वाकई राजी हैं, आपको पता भी है कि रब कहना क्या होता है, आपको पता भी है कि अल्लाह मेरा रब है, वो इसलिए मैं राजी इसलिए नहीं कि ये मेरे माँ बाप भी उसको रब मानते थे इसलिए, बल्कि मैं दिल से मानती हूं, मुझे पता है मेरा दिल इसके ऊपर ठुका हुआ है। समझाइए, आपका आपका दिल उसके ऊपर राजी होना चाहिए, इस्लाम के दीन होने के ऊपर राजी होना चाहिए। किसी ने कहा ना, मुझे समझ ही नहीं आती कि लोगों को कैसे इस्लाम में बनाए बताएं, इसको इंटेलेक्चुअली कैसे लोगों को बताएं, कैसे आपको समझ ही नहीं आती, इसका मतलब आप खुद ही क्या कन्विंस्ड है, आप इसका मतलब खुद ही कन्विंस्ड नहीं। हमारा दीन तो कहता है, हमारा तो कुरान कहता है कि तुम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाओ, तुम एक एक दो दो बैठ के और सोचो, हमें सोचना चाहिए, गौर और फिक्र करना चाहिए क्यों मैं इस्लाम को मानती हूँ, और फिर आपको सही समझ आएगी। और इसी वजह से आप देखें कि जो लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, किसी गैर मजहब से इस्लाम में दाखिल होते हैं, वो जितनी इसकी कदर करते हैं और जितनी उनको इसकी पहचान होती है, बॉर्न मुस्लिम्स को नहीं होती। इनको तो मिल गया, बस मिल गया, अभी तो शुक्र करना चाहिए कि मिल गया है, लेकिन आगे अब इसके बाद क्या करना, शुक्र है हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए, लेकिन ये सिर्फ इनाफ नहीं है, हम इसको शऊर के कॉन्शियसली इसको पकड़े, शऊर के साथ लें कि ये मेरा दीन है क्या, किस चीज को मैं मानती हूं, या ऐसी जिंदगी गुजार देनी। और यही वजह है फिर कि आज हमारे ही मुसलमानों में वो लोग हैं कि जब वो कहीं मुसलमानों को पिटते हुए देखते हैं, जब वो कोई मुसलमानों का जवाल देखते हैं, जब वो कोई काफरों को देखते हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं, तो फिर वो फौरन सोच में पड़ जाते हैं, दिल में शकूक आने लगते हैं, पता नहीं पता नहीं, और कौन ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आती। ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका दीन क्या है। तो इसी को तो कुरान कह रहा है कि कतई शक नहीं करना, चाहे आप देखें कि मुसलमान कितने कमजोर हो गए हैं और दूसरे पावरफुल हो रहे हैं, मगर तुम शक ना करना। देखें, आप याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के गलबे की बात की है, अल्लाह ताला ने इस्लाम की मदद की बात की है। मुसलमान या कोई भी अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ता है तो तब उसके साथ अल्लाह की मदद होती है, और अगर मुसलमान ही इस दीन को छोड़ देते हैं तो उनके लिए भी शामत ही है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ मदद की बात नहीं कि इस्लाम के साथ, इस्लाम, ठीक है। तो अब आप जब देखते हैं अगर के मुसलमानों को कोई जवाल पहुंच रहा है तो उसकी कोई वजह है, उनके अपने करतूत हैं जिसकी वजह से वो आज दुनिया में जिल्लत का शिकार हो रहे हैं, मगलूब हो रहे हैं, ये पता चल रहा है कि अल्लाह ने इनको छोड़ दिया। तो इसलिए दुनिया में कुफर के गलबे को देख के आप इस्लाम के बारे में शक ना करें, अगर ये सच्चे होते तो फिर ये ऊपर ना होते टॉप पे। अल्लाह ने इज्जत तो इस्लाम को दी है, इज्जत इस्लाम की है, मुसलमान के साथ नहीं, वादा इस्लाम की इज्जत है, इस्लाम के साथ जुड़ेगा कोई भी जुड़ेगा उसको भी इज्जत मिलेगी, नहीं जुड़ोगे जलील होगे, ठीक है। तो इसलिए ये शकुको शुभात आने लगे ये शैतान की तरफ से हैं, फौरन अपने लिए ये सोचे कि मैं वो इल्म लूं, मैं जानूं, मैं समझूं, अपने लिए ये डिसाइड करें, ये प्लान करें कि मैं इस दीन को अडॉप्ट करके जो बैठी हुई हूं आज तक, तो किस बेस के ऊपर, ये जो हक है ना, ये पूरी जोर के साथ खुद बोलेगा कि ये हक है, किसी और के पास हक नहीं है। इसीलिए तो लोग, आपने कई रिवर्टेड्स की बात सुनी होगी कि हम इधर भी गए, चर्च भी गए, सिनेगॉग भी गए, वो जी इनके पास भी ये जो होते हैं बुद्धिस्ट हैं उनके पास भी गए, फिर पता नहीं किन किन के पास, वो घूम घाम के जब कहते हैं हमें इस्लाम का तो सोचा भी नहीं था, कईयों का ऐसे सुना, फिर उसके बाद जब इस तरफ आए तो फिर पता चला कि ये है हक। तो इसलिए वो इकबाल ने कहा ना, तुम हमारी हालत जो बताई है कि सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, यानी इस्लाम किधर है तुम्हारा, तुम सब कुछ बन गए, कबीले के नाम रख लिए, बरादरियों के नाम रख लिए, पार्टियों के नाम रख लिए, अपने पेशे का नाम अपने साथ लगा लिया, लेकिन मुसलमान भी हो, बस मुसलमान इतने ही हैं हम सिर्फ कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मेरा नाम बस ये। तो फरमाया कि बिल्कुल शक में ना इस वजह से पढ़ना कि जो ये जिनकी ये पूजा कर रहे हैं पता नहीं सही ही ना हो, वह इन्ना वफूहम नसीबहुम गैर मनकूस, और बेशक हम पूरा पूरा बदला देने वाले हैं, उनका हिस्सा बगैर कमी के पूरा पूरा हिस्सा इनको मिलेगा जो जिसने किया होगा। अब बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के मैंने आपको क्या बताया, आपने तो शक नहीं करना था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके असल में मुसलमानों को समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। वलकद आतैना मूसा, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, फख्तलिफा फी, तो इसमें भी इख्तलाफ किया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये आपके जो आप पैगाम लेकर आए हैं उसमें ही नहीं इख्तलाफ कर रहा है कि कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी जब किताब दी गई वो लेकर आए तो बाज ने माना बाज ने नहीं माना। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका लकुधिया बैनहुम, और अल्लाह तआला के अगर एक बात जो गुजर चुकी है तेरे रब की तरफ से, या अल्लाह तआला ने फैसला फरमा दिया है, ऑलरेडी फैसला कर दिया है कि इनको आखरत में अजाब मिलेगा या इनके अजाब का फलां वक्त है, अगर ये बात तय ना हो चुकी होती पहले से अल्लाह के यहाँ, तो अभी ही अल्लाह ताला इनका फैसला कर देता, उसी वक्त फैसला कर देता। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी है और मुशरिकीन मक्का के बारे में भी है, अगर फैसला ना पहले से हो चुका होता तो ये अल्लाह ताला ने इनको टाइम देना है, इनको उनकी मर्जी करने देनी है, तो अल्लाह ताला फैसला कर देता, समझा देता सबको कि क्या हक है और क्या बातिल है और कौन गलत है और कौन सही है। तो हर दौर में इख्तलाफ होता है, फिर कोई लोग हक को मान लेते हैं, कोई लोग उसका इनकार कर देते हैं, मगर याद रखें हक को सिर्फ वो ही पा सकता है, हक समझते हैं क्या है? जो ट्रूथ है, जो जो बात सही है, उसको सिर्फ वो ही मानता है जो खुद को सरेंडर करता है, और जो ये नहीं करता, सिर्फ अपने मफाद चाहता है कि मेरा फायदा किस तरफ है। जैसे मैंने आपको बताया अभी ये मिसाल कि जो किसी ने बताया कि वो हिंदू हो गया मुसलमान था, तो भाई उसने हक को पहचानने के लिए, उसको ये नहीं है कि हक क्या है, उसको क्या है कि मेरा मफाद किस तरफ है। इसी तरह लोगों के साथ होता है कि वो जब सामने अपनी चीज देखते हैं ना तो इख्तलाफ क्यों पैदा होता है, ऐसा नहीं कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हक क्या है, ये सही है कि नहीं है, बेचारे कंफ्यूज होते, कंफ्यूज नहीं होते, उनको पता है कि वो इधर को तो हमारा मफाद नहीं है, उधर हमारे फायदे हैं। जैसे फिरौन की बात को उन्होंने क्यों माना, नजर नहीं आ रहा था किसी को, अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये कैसा जालिम जाबिर और कैसा आदमी है, इसके पीछे चलना गलत है, लेकिन क्या चीज उनको चला रही थी, क्यों बनी इसराइल ने मान लिया और किब्तियों ने नहीं माना, उनके मफाद थे ना वहां। इन्नहुम लफी शक मिन्हु मुरीब, और वो एक शक में है जो बेचैन कर देने वाला शक है। किताबुल्लाह में जब लोग इख्तलाफ करते हैं तो अब वो शक में जो मुब्तला हो गए तो वो तकलीफ दे शक है, इसलिए कि हक तो खुद अपने आप बोलता है ना, अब उसका इनकार करके भी तो जाए कहां, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि मैं ही हक हूं। जब उनको ये एक बेचैन कर देना वाला शक, क्योंकि जाहिर है जब इंसान एक हकीकी बात को देखकर और बस इनकार कर रहा है तो अंदर तो बेचैनी होती है कि पता नहीं सही कर रहा हूं कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो तकलीफ दे शक में है। वह इन कुल्लम्मा, अब ये इतनी बात है लेकिन इसमें इतनी ताकीद है, इन्ना लम्मा लयुवफियन्नहुम, अलबत्ता और अलबत्ता जरूर और बेशक, और इस ये सारी ताकीदें हैं। और ये ताकीद किस चीज पे की गई है, क्या चीज है जो हमें समझानी मकसूद है, कि यहां पे हमें बताया गया कि बेशक सब के सब, सब अलबत्ता जो, अलबत्ता जरूर पूरा करके दिया जाएगा उनको उनके आमाल का बदला, तेरा रब उनको उनके आमाल का बदला पूरा पूरा करके जरूर बस जरूर सब के सब को देगा। नहीं, इतने दफा इस बात को एम्फसाइज किया गया, इन्ना लम्मा ल नून मुशद्दद, ये सारी बातें करके कि अल्लाह ताला ने जरूर बस जरूर बदला देना है, यानी सबको मिलके रहेगा जो उन्होंने किया है उसका बदला, हत्ता के मिसकाला जर्रतिन भी किसी ने किया है उसका भी बदला मिलके रहना, चाहे वो बुराई है चाहे वो भलाई है। कितनी जल्दी ये बात महव हो जाती है ना जहनों से, कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं ना, अगर ये याद रहे तो भला बताएं कि कोई कोई औलाद अपने वालदैन के साथ बुरा करे, कोई बहन भाई एक दूसरे के साथ मुंह मोड़े, कोई जुल्म करे, कोई रिश्वत ले, कोई हराम खाए, आप देखिए कितनी छोटी सी जिंदगी है ना, छोटी सी जिंदगी है, 70-80 साल हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 80 के बाद तो वैसे ही इंसान का कुछ भी नहीं रहता, किसी काबिल ही नहीं वो बेचारा रहता। इतनी जिंदगी में भी वो काम ना कर सके जिसे अल्लाह को राजी कर ले और साईद लोगों में शामिल हो जाए, इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना अल्लाह को नाराज कर दी कि शकी बन गए, इतनी छोटी सी जिंदगी में भी अपनी ख्वाहिशात को काबू नहीं कर सके, इतनी छोटी सी जिंदगी में भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सके कि मैंने नहीं करना वो सब जो सब लोग कर रहे हैं, इतनी सी छोटी सी जिंदगी में भी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी ना दे सके कि मेरी ख्वाहिश है इसको कुर्बान करना पड़ जाए पड़ जाए, मेरी ख्वाहिश मर जाए तो मर जाए, लेकिन मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, छोटी सी जिंदगी में भी ना कर सके, अगर इतने से टाइम के लिए भी अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर सके, होल्ड नहीं कर सके, काबू नहीं कर सके, अपने आप को रोक नहीं सके, तो फिर खुद ही प्रूव कर दिया ना कि मैं तो जन्नत के काबिल नहीं, यहीं पे अपने आप को प्रूव करना है, इसी छोटी सी जिंदगी में ही प्रूव करना कि मैं जन्नत के काबिल हूं, मैं वहां पे पीसफुली रह सकती हूं। तो अल्लाह ताला इतना एम्फसाइज करके इंसान को याद दहानी करा रहे हैं कि ये बात भूलना नहीं कि पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा सब के सब को, कोई तुम में से ऐसा नहीं होगा जिसको अल्लाह भूल जाए, सबको उनके अमल का, हर अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाए। इतने ज्यादा इस चीज को शिद्दत से बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि इंसान भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि इस अमल का भी तो बदला मिलना है, इसका भी बदला मिलेगा, इसका भी बदला मिलेगा, नेकी कर लिए तो इसका भी मिल जाना, फिक्र ना करो, कहीं नहीं छुप जाएगी ये, कहीं लॉस्ट नहीं होनी, और बुराई भी है तो इसका भी मिल जाना है। जब इंसान ये बात याद रखता है ना तो वो एक छोटी सी लाइफ के अंदर अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर वो उसको होता है इसका भी मिल जाएगा, ये सुभान अल्लाह मैंने पढ़ी इसका भी मिल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी इसका भी मिल जाना है, और फिर हाँ एक थोड़ी बदला मिलेगा, 10 और 70 और 700 गुना। एक कदम मैंने अल्लाह के रास्ते में निकाला है ना, ये एक कदम नहीं है, ये 700 कदम है। एक मिनट मैंने लगाया ना अल्लाह के रास्ते में, ये एक मिनट नहीं है, ये 700 मिनट है। और हो सकता है बेहिसाब ही अल्लाह कर दे, बेहिसाब अजर का भी बात है, उसको बेहिसाब कर दे, डिपेंडिंग ऑन कि मेरी नीयत क्या है। और नीयतों को कैसे सही करें, क्या करें नीयत सही करने के लिए, मेरी नीयत है क्या, मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं मेरी नीयत है क्या। तो अपने आप से पूछें, बार बार खुद से सवाल करें कि मैं ये काम क्यों कर रही हूं, मुझे इससे क्या चाहिए, मेरा इसमें क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा इससे। खुद अंदाजा लगाएं कि मैं कितनी मुखलिस हूं, मैं कितने अजर के लिए ये काम कर रही हूं, मैं जो किससे अजर लेना है। नियतों को खालिस करेंगे तो फिर पूरे पूरे बदले, वरना अमल जाया, पूरा पुदरा बदला। नियत ही नियत है वो बीज, अगर बीज खराब है तो दरख्त ही खराब हो जाता है। देखा फिर वो तो दरख्त सही फल ही नहीं दे सकता जिसका बीज ही खराब हो। तो बीज खराब, नियत खराब, तो अमल भी खराब, अमल भी गला सड़ा, तो उसका क्या बदला मिलेगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उसको भी। यानी आपका गला सड़ा अमल था, रिजेक्टेड है, इसका ये बदला है। तो अल्लाह ताला तो पूरा पूरा बदला देने वाला है। तो नेकी करने वाले आगे बढ़, बेफिक्र ना कर, तेरी नेकी लूज नहीं होगी, तेरा ये वक्त जाया नहीं हो रहा, ये बैठे हुए ये कुरान पढ़ने के लिए सीखने के लिए जाया नहीं है ये वक्त, पूरा पूरा अल्लाह ने दे देना है इसका बदला। अगर किसी गम पे सबर कर रहे हो ना आप, तो वो सबर जाया नहीं होता, उसका भी बदला मिल जाना है। फिक्र किस बात की, क्यों परेशान होते हो। अगर कोई अपने आप को होल्ड कर रहा है तो इतनी बड़ी वो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरे ऊपर ये देखो जरा मैंने कितना अपने आप को कंट्रोल किया, फलानी ने मुझे ये बात कह दी, फलान ने मेरा मजाक उड़ाया, फलान ने मुझे ऐसी ऐसी तंज किए, फलान मुझे मुलानी कहने लगी, फलान ने मुझे, तो क्या हो गया, आपको पूरा पूरा इसका बदला मिलना है, क्यों परेशान हो रही है ना। नेकी करके परेशान हो ना, उसको ये सोच के परेशान हो कि इसने कहीं निकल जाना है, या इसने कहीं लूज हो जाना है, या ये कहीं जाया हो जाएगी, या अल्लाह को पता नहीं है नाउज़ु बिल्लाह के भूल ही ना जाए। हाँ लेकिन नियत अगर खालिस हो तो, और उसमें रिया ना हो, तो फिर देखना कैसा बदला पाएंगे। फिर तो छोटी सी मुस्कुराहट का भी बदला है, फिर एक बिस्मिल्लाह का भी बदला है, फिर एक सलाम का भी बदला है। ये कुछ भी इनमें जाया नहीं है, कुछ भी इनमें फालतू नहीं है, कुछ भी इनमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं है कि बस कर लिया तो चलो, नहीं। ये नेकियां छोटी छोटी भी बहुत बड़ी बन जाएगी कयामत के दिन। और सेम गोज फॉर बुराइयां, जो गुनाह है उनका भी सेम है, ये भी छोटे छोटे गुनाह भी पहाड़ बन जाएंगे, ढेर बन जाएगा। तो गुनाह करके बेफिक्र ना हो जाए, उसका भी बदला मिल जाना है। तो ये बात भूलती है तो तब नेकियों से सुस्ती होती है और गुनाहों में इंसान दलेर होता है, कि जब जब ये बात याद रहेगी इंसान को कि पूरा मुझे तो मिल जाना, इस बात का भी मिल जाएगा, इस चीज का भी मिल जाएगा, तो फिर जो सुस्ती आने लगती है ना नेकी के काम में, मैं क्यों करूं, मैं क्यों ऐसे, मैं ही रह गई हूं करने को, ये बातें नहीं आएंगी, मुझे बदला तो मिल ही जाना। आपको पे मिल रही हो तो आप रात को भी उठ के जाके ड्यूटी पे खड़े हो जाते, आपको पे मिलने का होता है तो आप सर्दी के दिनों में सुबह सवेरे स्नो साफ करके भी आप जाते हैं जॉब पे, क्योंकि आपको पता है ना मुझे पे मिलनी है इसकी। तो जब इंसान को पेमेंट का पता होता है, यकीन होता है ना, तो फिर इंसान को सुस्ती नहीं आती नेकी करने। और जब ये पता है कि गुनाह करूंगा ना, ऐसा बोल बोला भी तो इसके ऊपर सजा है, तो फिर भी इंसान फिर बाज रहता है। इन्नहु बिमा यामलून खबीर, बेशक वो जो भी अमल करते हैं उससे बाखबर है। और उसको खबर रखने के लिए कोई ये नहीं जरूरत कि कोई आके उसको बताएगा तो उसको खबर मिलेगी, कोई उसके फरिश्ते उसको आके रिपोर्ट करेंगे तो उसको पता चलेगा, उसको तो ना सुनने ना देखने की कोई चीज भी नहीं, उसको जरूरत नहीं है, उसको हर चीज की वैसे ही खबर है। फस्तकिम, ये है वो आयत जिसके ऊपर बाज रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी डिमांड है एक इंसान से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद तो कायम थे ही, लेकिन ये था कि उम्मत के लिए भी ये हुक्म है कायम रहे, बस कायम रहे तू ए ए नबी, आप भी कायम रहे। और इस्तकामत का मैंने क्या बताया, कामा से, यानी स्ट्रेट रहना, स्ट्रेट रहना, बिल्कुल फर्म रहना, डट जाना। इस्तकामत का आपको मतलब तो पता ही होगा ना कि हम आपको कहते हैं अब इस्तकामत से चले, स्टेडफास्ट होना। तो और फिर ये भी मतलब है कि जब सीधा इंसान खड़ा होता है तो इधर उधर नहीं झुका होता, फिर स्ट्रेट होता है वो, और ये काम आसान नहीं होता। तो इस्तकामत लफ्ज तो छोटा है मगर इसका मफहूम बहुत वसी है कि इंसान अपने अकीदे पे, अपनी इबादात पे, अपने मामलात पे, अपने अखलाक में, अपने माशरत पे, अपनी कमाइयों में, ये सारी जिंदगी के मामलात में इनके अंदर बिल्कुल कायम करदा हदूद के, यानी अल्लाह ताला ने जो बताया हुआ रास्ता उसके ऊपर सीधा चलता रहे, इधर उधर ना हो, डेविएट ना हो, ना इधर झुके ना इधर झुके, ना रास्ता बदल ले, ना एग्जिट ले ले, वरना इस्तकामत नहीं है। अकीदा में इस्तकामत क्या है कि बिदात ना करे, वो भी एक तरफ को रास्ता ले लेना। फिर इसी तरह और चीजों में इस्तकामत, बस स्ट्रेट रहना है। अंबिया अलैहिस्सलाम की इज्जत, उनकी मोहब्बत में जो जो हद मुकरर की गई है उसमें ही रहना है, स्ट्रेट रहना है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा इतना गुलूफ कर देना कि उनको अल्लाह ताला के बराबर कर दे, ना ही कोई इस तरह से करना कि उनको उनकी कोई यानी उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, जैसे यहूद नसारा जो है गुमराह हो गए। तो इसलिए तमाम मामलात के अंदर इंसान का स्ट्रेट रहना इस्तकामत है। माशरे के भी, अखलाकियात में भी, जो असूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए, जो तालीम दे दी, उसमें सीधे उसी पे चलना, चाहे वो दोस्ती है, चाहे दुश्मनी है, चाहे नरमी है, चाहे गर्मी है, चाहे गुस्सा है, चाहे खर्च करना है, कंजूसी है या सखावत है, आप किससे पूछेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बता दी उस पे स्ट्रेट चलते रहे, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो ये है एक इस्तकामत का रास्ता। जैसे किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे इस्लाम के मामले में कोई ऐसी जामे बात बता देंगे मुझे इसके बाद किसी से पूछने की जरूरत ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमंतु बिल्लाही सुम मस्तकिम, कह दो कि मैं अल्लाह पे ईमान लाया, फिर इस पे मुस्तकीम रहो, इस्तकामत के साथ चलो। तो इस्तकामत मैंने बताया ना आपको, जम जाना भी इस्तकामत है और स्ट्रेट रहना भी इस्तकामत है, कि ना मैं इधर हूं ना इधर, समझे। तो ये वो आयत है जो मुश्किल है, ये इसके ऊपर अमल, क्योंकि हमारी तरह तो नहीं ना वो लोग कि भाई सिर्फ बस पढ़ लिया और उसके बाद पता ही नहीं कि क्या पढ़ा और बस बंद करके रख दिया, नहीं, वो लोग उन्होंने अमल करना होता था ना, तो उनको ये फिक्र थी कि इसके ऊपर हम कैसे अमल करें, कैसे इसके ऊपर चलें। कि एक तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि मुस्तकीम रहना, सीधा रहना, और एक इस्तकामत के साथ रहना, कि साबित कदमी के साथ रहना, तो दोनों माने समझ आ गए ना, कायम रहो साबित कदमी के साथ और कायम रहो इफरात और तफरीत से बच के, यानी हम ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बल्कि सीधा, ठीक है। अब देखें, अब इस्तकामत के ऊपर आते हैं, कोई भी काम अगर उसके अंदर इस्तकामत ना हो ना तो उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। चाहे आप कोई चीज भी उठा के देख लें, आप कुकिंग करती हैं उसके अंदर आप देख लें, आपने आपके अंदर इस्तकामत ही नहीं, आपने थोड़ा सा गोई गलाया और उसके बाद वैसे ही छोड़ के चली गई, अब नहीं मुझसे होता, अब मेरा मूड नहीं है, अब मैं थक गई हूं, तो वो किसी काबिल ही नहीं होगा, ना खाने के काबिल होगा, ना किसी के इस्तेमाल के काबिल होगा। अब इसी तरह आप जॉब पे जाती हैं, आपके अंदर अगर इस्तकामत नहीं, आप एक दिन गई उसके बाद आपने कहा नहीं मैंने नहीं, अब मैं नहीं जा सकती, अब मुझे दिल नहीं करता जाने का, क्या होगा? वो आपको निकाल देंगे। तो इस्तकामत कोई काम, अब आप बिजनेस वाले देख लें जो अपनी दुकानें खोलते हैं, कैसे इस्तकामत के साथ खोलते हैं? वीकेंड पे लोग घर पे बैठे हुए हैं, वो अपनी दुकान खोल के बैठा, वो उसको पता है कि मैंने साबित कदमी के साथ ये काम करूंगा तो कारोबार में कोई कामयाबी होगी, कोई नफा होगा। तो अगर हम हर चीज में सिर्फ ये देखते हैं ना कि मेरा मूड होगा, मेरी मर्जी होगी, मुझे फिजिबल लगेगा, मेरे लिए आसानी होगी तो फिर मैं करूंगी, तो फिर कोई काम भी नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात हमें दुनिया के मामलों में समझ आती है, मेरी मर्जी नहीं भी है तब भी मैं सर्दी में उठ के फिर जॉब पे जा रही हूँ, और मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं कॉफी लेके और बस मैं आग के आगे बैठ जाऊं और मैं सर्दी में आग तापू, ये मेरा दिल करता है, लेकिन मैं अपने दिल की नहीं मानती, मैं जॉब पे चली जाती, मुझे पता है मुझे जॉब पे जाना है, मुझे पता है ये मुझे काम करना है, ये है इस्तकामत। एक अच्छा तालिब इल्म है, उसको पता है कि मुझे पढ़ना है, वो पढ़ता भी, ये नहीं करता मैं मेरा दिल नहीं कर रहा उठने का, सोता ही रहे। लेकिन क्या दीन के मामले में भी हम ऐसे करते हैं? दीन के मामले में जहां बात आ जाती है वहां पे हम कहते नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थक बहुत गई हूं, चलो जो कोई बात नहीं कजा नमाज पढ़ लूंगी। जॉब हमें उठा के बाहर खड़ा कर देती है, दुकान खोलनी है तो वो टाइम पे खोलनी है, ये हमें जगा देता है। या बच्चा अगर हमारा छोटा है और वो रो रहा है तो हम उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन क्या बात है नमाज के मामले में, कुरान के मामले में और दीन की जितनी भी बातें हैं उनके मामले में हमारे अंदर इस्तकामत नहीं है। हम मूड के बंदे हैं उनमें, मूड है तो करेंगे, आसानी है तो करेंगे, अब दिल नहीं चाह रहा, अब नींद नहीं खुल रही, रात को बहुत लेट सोई थी, अब इस तरह की उसके साथ कैसे इस्तकामत होगी? देखिए जम जाना ना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको किसी फील्ड में भी तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप ये पढ़ रहे हैं, अगर आप कभी आते हैं क्लास में कभी नहीं आते, कभी आपने टेस्ट दिया कभी नहीं दिया, कभी आप जो है कोई इसकी जो कोई रिक्वायरमेंट है ग्रुप की या कोई वो करते हैं कभी नहीं करते, तो आप कमिटेड नहीं है फिर। कमिटमेंट मांगी गई है, कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ इस दीन पे चलो, जी चाहे तो करो और जी चाहे तो ना करो, ये नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें हमें सीखनी, और इसके लिए बताया गया, इसी को कहा गया फस्तकिम कमा उमिरता, फस्तकिम तक तो बात ठीक है, कमा उमिरता ये चीज थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया, कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि इस्तकामत, बल्कि जैसे आपको हुक्म दिया गया उस तरह इस्तकामत। तो अंबिया अलैहिस्सलाम तो बहुत सीरियस होते थे ना इस मामले में, तो फिर ये कि इस्तकामत ऐसी जैसे अल्लाह का हुक्म है, तो ये फिक्र लग गई कि अल्लाह ताला को जैसी इस्तकामत चाहिए, पता नहीं मैं वैसी कर सकता हूं कि नहीं, पता नहीं वो मेरी पूरी हुई या नहीं, ठीक है? और ये भी चीज ने आपको बूढ़ा कर दिया कि आपसे ही नहीं इस्तकामत मांगी गई, वह मन तबा माक, और जो पलट आए आपके साथ, जो आपके साथी हैं, जो कुफर और शिर्क छोड़ के आपके साथ मिल गए, जो इन्होंने गुनाहों की जिंदगी छोड़ दी, वो सारे काम छोड़ दिए, तौबा कर ली, पलट आए, ईमान की तरफ आ गए, उनसे भी यही मतलूब है, उनसे की भी यही रिक्वायरमेंट है कि वो भी इस्तकामत इख्तियार करें। और वला ततगौत, और हदें क्रॉस ना करें, तो यानी क्या होती है, हद को पार कर लेना, इसीलिए सरकशी के लिए भी आता है, ये भी आता है कि सर उठा देना और फिर यानी हदों को पार कर देना, हदों से निकल जाना, तो ये ऑपोजिट है इस्तकामत का, कि आपको कहा गया कि आप स्ट्रेट चलें और आप हद पार करके किसी और ही तरफ चल पड़े, अल्लाह ताला ने हदें मुकर्रर की हुई हैं, इनसे बाहर नहीं निकलना। तो इंसान तय करे कि मुझे अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर चलते हुए इस्तकामत से चलना है, और यही अल्लाह ताला ने मुझसे मुतालबा किया है, यही रिक्वायरमेंट है मेरे लिए भी, मन ताबा माका में बाकी लोग भी आ गए। अल्लाह ताला को ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो बस हालात को देखते हैं, मौसम देखते हैं, फिर उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं, भाई आप हालात का रुख किसर किधर को, फिर हम चलेंगे। और लोग क्या कर रहे हैं फिर हम देखेंगे, पहले लोगों को फिर हम फैसला करेंगे। नहीं, कमिटमेंट चाहिए। आप अपने हस्बैंड से कमिटमेंट मांगते हैं कि नहीं? कि वो आपसे ही कमिटेड हो, और अगर वो आपसे सिर्फ कमिटेड नहीं है और वो कहीं और भी जाके कहीं और भी कुछ कोई ताल्लुकात बना ले, तो आपको कैसा लगेगा? आप उनकी लाख अच्छाइयां भी हों, ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहते हैं मेरे साथ सिर्फ कमिटेड रहो, ठीक है, लेकिन हम अल्लाह से तो कमिटेड हैं नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट कितनी है अल्लाह ताला के साथ, इस दीन के साथ, अल्लाह के हुक्मों के साथ, कितनी कमिटमेंट है? जो बार बार ये कहते तो हम हैं कि हम मुसलमान हैं, बार बार हमारी कमिटमेंट्स क्यों टूट जाती हैं? कोई खुशी का मौका आया तब कमिटमेंट टूट गई, कोई गम का मौका आया तब टूट गई, थक गए तो तब टूट गई, कोई कमिटमेंट है ही नहीं। जॉब मिल गई तो तब जॉब की तरफ भाग गए, अब ना नमाजें पढ़ रहे हैं, ना कुरान सीख रहे हैं, ना कुछ है। जरा सी भी कोई हमें जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो हम सबसे पहले इसको छोड़ते हैं, ये हमारी कमिटमेंट जो दीन के साथ है ना, इसको छोड़ते हैं। अगर जॉब वालों ने कह दिया आपसे हिजाब में नहीं आ पाए, तो हम कहते कोई मसला ही नहीं, क्योंकि तो हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है ना। तो कमिटेड वो इंसान होता है कि हालात जैसे मर्जी हो जाएं, हालात का उतार है, चढ़ाव है, कुछ है, आप कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर चलते रहे, बराबर चलते जा रहे हैं अपनी आखिरी सांस तक। इस्तकामत क्या होता है? किसी चीज पे मजबूती से जम जाना, फर्म होना उसके ऊपर, कि कोई आपको हिला ना सके। अब बच्चे हमें कोई बात कहते हैं तो वो हमें हिला देते हैं, हाँ क्या करें, बच्चों की भी तो सुननी है। तो कभी बच्चा हिला रहा है, कभी शोहर हिला रहे हैं, कभी माँ बाप ने कुछ कह दिया, कभी लोगों ने कुछ कह दिया, हमारी तो कोई कमिटमेंट है ही नहीं। क्या कमिटमेंट है? फिर जब सारे खुश हो जाएं तब हमने अल्लाह के हुक्म मानने, सब राजी होंगे, सब हमें यस कहेंगे, सबकी मर्जी हो जाएगी, तब हम चल पड़ेंगे। किसी ने भी मूड ऑफ कर लिया, फ्रेंड्स जो हैं वो ना राजी हुए, या फिर बच्चे हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैंने छोड़ो भी सब चीजें। क्या कमिटमेंट है फिर? तो ये किसी के उसके ऊपर नहीं है कि मेरा अपना जी है या किसी और का जी है, तो तब हम करेंगे। कमिटमेंट वो है कि कोई कुछ भी कह दे, मैं कमिटेड हूं अल्लाह के दीन के साथ, ऐसे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए मैंने नहीं हिलना। इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर, बेशक वो जो भी तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। वला तरकनु, और ना तुम झुको, इल्लल्लदीना ज़लमू, उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया, फतमस्सकुमुन नार, तो छू लेगी तुमको आग, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, फिर तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा और ना तुम मदद दिए जाओगे। क्या कहा गया हमें? जालिम के साथ जुल्म में शामिल होना तो दूर की बात है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम उनकी तरफ झुकाव भी ना रखो, इंक्लिनेशन भी ना तुम्हारी हो, उनके जुल्म के तरीके से राजी भी ना हो, उनके तरीके को तारीफ की नजरों से भी ना देखो, अच्छा भी ना समझो, सो वॉट, ये भी ना कहो। ये भी यानी जो जालिम है ना, उसकी उसके पलड़े में अपना वेट मत डालो। सपोर्ट तो दूर की बात है और उसके साथ जुल्म में शामिल होना तो दूर की बात है। हमारा होता ये है कि कोई इंसान जुल्म कर रहा है तो हम कहते हैं हाँ तो कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, हम क्या कहें। जुल्म में सबसे बड़ा जुल्म तो आपको पता है क्या है? शिर्क। इसके अलावा भी जो गुनाह है वो जुल्म है, जो इंसान अपने ऊपर करता है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना कहा था ना आदम अलैहिस्सलाम ने, तो वो उन्होंने तो कोई शिर्क तो नहीं किया था, जुल्म किया है यानी गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी। तो उन जो अल्लाह के नाफरमान है, जो ऐसे बुराइयों के काम करने वाले हैं या जो शिर्क करने वाले हैं, उनका साथ देना तो दूर की बात, तुम उनको जरा भी उनकी तरफ झुकाव भी ना रखो। अगर तुम्हारा उनकी तरफ झुकाव हो गया तो तुम्हें आग लग जाएगी, फिर तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। समझ आई बात? इतनी आसानी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। आग लग जाएगी फिर जिंदगी को, तो फूंक फूंक के कदम रखना। ऐसे लोग देखे जो शिर्क करके जुल्म कर रहे हैं, उनके शिर्क को अच्छा समझना, उनके शिर्क की बातों में शामिल हो जाना, उनके शिर्क के फेस्टिवल्स में शामिल हो जाना, ये क्या है? ये इंक्लिनेशन नहीं है क्या? वो क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, वो सेंटा कर रहे हैं, वो पता नहीं गिफ्ट दे रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो जालिम है। शिर्क करके उन्होंने जुल्म किया, हमारे लिए इंटरटेनमेंट है, हमारे लिए इंजॉयमेंट है, हमारे लिए है। सो व्हाट, इससे क्या हो गया? वो दिवाली कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को वैसे कपड़े बना के दिवाली के दिन खड़ा कर दे, खुद भी खड़े हो गए हैं। वो होली मना रहे हैं, हम उनके साथ होली में शामिल। सो व्हाट, कलर्स ही तो हैं। उनके ये शिर्क के फेस्टिवल्स हैं, उनकी ये शिर्क की चीजें हैं, क्या ये इंक्लिनेशन नहीं है? आपका काम तो ये था, आपका दीन तो आया कि बातिल को मिटा दे और हक को सबके सामने कर दे। आप तो खुद बातिल की झोली में जाके बैठ गए, आप तो खुद बातिल परस्तों के साथ उनकी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। और फिर अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे करना, तो फिर आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए। ओहो, आप तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको तो सबको टॉलरेट करना चाहिए, ये टॉलरेशन है? आपको तो कहा गया अब इनकी तरफ मायल भी ना होना। हाँ, इनकी तरफ मायल भी ना हो, चाहे वो कितने भी ताकतवर हैं और आपको लगता है इनसे दोस्तियां करने से या इनको इनके चीजों के ऊपर यानी इनकी हाँ में हाँ मिलाने से हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं। या फिर हम जरा ठहर के दावा करेंगे, फिर दावा के रास्ते खुलेंगे ना, ताकि हम इनकी तरफ इंक्लिनेशन करें। तो काफरों ने भी तो आपसे हमसे कहा था कि आप आए एक दफा हमारे बुतों के पे हाथ रख दें, हम आपको मान लेते हैं, आप एक दफा झुक जाएं, फिर हम आपकी तरफ, हम आके झुक जाएंगे, उधर हम झुक जाएंगे, आप एक दफा इनको एंडोर्स कर दें। तो कहा कोई आपसे सलम को अल्लाह ताला ने कि नहीं आप कर दें, क्योंकि चलो इस तरह ही अगर ये मान रहे हैं तो, या आपसे सलम जाके ये करते? नहीं, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो शिर्क करने वाला या अल्लाह की नाफरमानियां करने वाला है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे तबलीग का ही आपका क्यों नहीं है कोई मोटिव। तो जो गलत कार है, उनके अव्वल तो उनकी बात, उनकी बुराई से उनको मना करना है। अगर नहीं मना कर सकते तो कम से कम अपना वेटेज तो उसमें ना डालो। और आज जो मुसलमानों को आग लगी है, वो इस वजह से ही लगी है कि इन्होंने अपना वेट पूरा जालिमों के पलड़े में डाल दिया। तो आज देखें कैसी आग लगी हुई, जिल्लत है, रुसवाई है, कुछ रह नहीं गया। तो जालिम तो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे करीबी दोस्त हो, होना ही नहीं चाहिए, बल रिश्तेदार हो या कोई कुलीग है या कोई आपके साथ उठने बैठने वाले कहीं हैं, उनके उनकी तरफ मायल नहीं होना। वाकई में सलाह और नमाज को कायम करो, कब कब, ये एक मौका कुराने पाक में ऐसा है जहां पे नमाज के औकात का बताया जा रहा है। वैसे कुराने पाक में कहीं पे ये नहीं कि नमाज 5 दफा पढ़ो ऐसे करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा औकात का हमें पता चलता है। ये नमाज के बारे में हमें तफसीलात जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी और फरमा दी है, सल्लु कमा रअई तुमूनी सल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। तो कुरान हमें बताता है, तरफा ये नहार, दिन के दोनों किनारों पे नमाज पढ़ो, व जुलफ मिन अल्लैल, और कुछ हिस्सा रात में से। शुरू के अंदर तो सुबह शाम और रात की नमाज होती थी, तहज्जुद की, यही होती थी जब नमाजें भी फर्ज नहीं हुई थी। फिर उसके बाद नमाज फर्ज हो गई तो 5 नमाजें फर्ज हुई मेराज पे। तो अब देखें आप, तरफा ये नहार तो क्या मतलब, दोनों किनारे, तो मुफसरीन कहते हैं कि फजर और असर, क्योंकि दो किनारे हैं ना ये दिन के, असर के बाद तो दिन खत्म हो जाता है। और जो जुलफ़ा मिनल लैल, ये है रात की यानी मगरिब और इशा की, ठीक है। और बाज ने दो तरफों से फजर, जोहर और असर मुराद लिए, क्योंकि जोहर के वक्त भी देखे ना दिन ढलना ही शुरू हो जाता है, ठीक है, पीक पे नहीं होता उस वक्त दिन। तो और बाज कहते हैं कि नहीं, जो जोहर की नमाज का है वो दूसरी जगह पे आया और यहाँ पे सिर्फ फजर और असर का आया, क्योंकि दूसरी जगह पे आया वाकई में सलात अली दुलू की शम्स, तो वहां पे जोहर की नमाज के वक्त का। और फिर फरमाया नमाज के औकात का बता के, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक जो नेकियां हैं ना वो बुराइयों को ले जाती हैं, डिलीट कर देती हैं बुराइयों को, मिटा देती हैं, उनका सफाया कर देती हैं। नेक काम जब इंसान करता है तो उसके गुनाह मिटते जाते हैं। समझ लें कि नेक काम इरेजर का काम करते हैं, जैसे आप पेंसिल से कुछ लिख लें तो उसके बाद आप मिटाने के लिए इरेजर लेते हैं ना और उसे मिटा देते हैं, नेकियां ऐसे ही हैं। नेकियां इरेजर हैं जो आपकी बुराइयों को मिटाती हैं। इस नियत से भी इंसान को नेकी कर लेनी चाहिए, जब कभी गुनाह हो जाए, जब कोई गलती हो जाए, आपको पता चल गया मुझसे ये गलती हो गई है, तो फौरन कोई नेकी करके उस गलती को मिटाने की कोशिश करें, उसको प्रोलोंग नहीं करें। तौबा इस्तगफार तो करते ही है ना आप, साथ आप नेकियां करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नेकी मिटा देगी गुनाह को। और खास तौर पे यहां पर नमाज की तरफ इशारा है, क्योंकि पीछे नमाज की बात आई ना, तो वो कौन सी नेकी है जो गुनाह को मिटाती है, बाकी भी नेकियां मिटाती हैं मगर खास तौर पे नमाज, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि 5 नमाजें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और एक जुमा दूसरे जुमे तक, और एक रमजान दूसरे रमजान तक गुनाहों का कफारा बन जाता है जो इनके दरमियान हुए, मगर वो उसके लिए जो फिर कबीरा गुनाह से बचा रहा हो। जबकि कोई कबीरा गुनाह से बच रहा हो तो फिर एक नमाज, जैसे आपने फजर पढ़ी और उसके बाद जोहर पढ़ ली, तो फजर और जोहर के दरमियान कोई गलतियां हुई हैं, छोटे गुनाह हुए, कबीरा गुनाह हुए, तो वो माफ हो जाते। आपने जोहर से असर पढ़ी तो जोहर और असर के दरमियान के गुनाह माफ हो जाते, और मगरिब से ईशा पढ़ी तो मगरिब ईशा के दरमियान के गुनाह माफ हो। तो यानी इस तरह एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान के गुनाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस तरह खुद ही माफ करता जाता है, जबकि इंसान ने अभी तो तौबा भी नहीं की होती। बड़े गुनाह है जो है, जैसे शिर्क है, कत्ल है, जिना है, झूठ है, अहद शिकनी है, हराम माल खाना है, औरतों पे तोहमत लगाना पाक दामन औरतों पे, या यतीम का माल खाना, या जादू करना, या झूठी गवाही देना, ये सारे जो है ना ये बड़े गुनाह हैं, ठीक है। अब उन गुनाहों के लिए तो तौबा भी करनी जरूरी है, और अगर इंसानों के मामले में है तो फिर उनका हक भी देना जरूरी है। लेकिन ये छोटे छोटे गुनाह हैं उनको मिटाने का जरिया है नमाज, और उनको मिटाने का जरिया दूसरी नेकी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, ईमेल्स आती हैं, हमसे ये गुनाह हो गया है, हमसे ये बुराई, अब हम क्या करें, हम बड़े बेचैन हैं। तो उस वक्त नेकी करें, नेकी करें फौरन, कोई ना कोई नेकी, चाहे आप नमाज पढ़े, नफल पढ़े। इसीलिए वो कहते ना कुछ सलाते तौबा पढ़ते हैं, सलाते तौबा इटसेल्फ कोई नमाज नहीं है, लेकिन आप नमाज पढ़े पे तौबा इस्तगफार करें, क्योंकि आपने नेकी एक कर दी ना वो आपके गुनाह को मिटा देगी। और आपको वो हदीसे भी पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी, अगर किसी की घर के सामने कोई नहर है और वो उसके अंदर 5 दफा गुसल लेता है, एक दफा गुसल लेने से इंसान पाक साफ हो जाता है, कोई 5 दफा गुसल ले तो क्या उसके ऊपर कोई मैल कुचैल रहेगा? सहाबा ने फरमाया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें ऐसी, उनकी भी मिसाल ऐसी ही है कि अल्लाह ताला उनकी वजह से गुनाहों को मिटा देगा। तो आप नहाते हैं, आपकी मैल कुचैल दूर होती है। 5 दफा दिन में कोई नहाने लगे तो सोचे, तो 5 नमाजें ऐसी, इतनी इंपॉर्टेंट है ये नमाज। फिर इसी तरह वुजू करना, ये भी इंसान के जो गुनाह है, नमाज से पहले जाहिर वुजू करेंगे ही तो नमाज पढ़ेंगे, उससे भी इंसान के मुंह के गुनाह, हाथों के, पैरों के, कोहनियों के, सर का मसा किया तो सर के गुनाह, इससे भी इंसान के माफ होते हैं। इसी तरह 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ना, या नमाज के बाद तस्बीहात करना, या लोगों से तकलीफ को दूर करना, या सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाएगी, तो उसके भी गुनाह माफ हो जाएंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा का जवाब देना, इससे भी गुनाह माफ हो जाते हैं, जिसकी ये उनके साथ मिल जाए, फरिश्तों के साथ। तो बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हमें अमल बताए हैं जो गुनाहों को मिटाने वाले हैं, वो नेकियां ऐसी हैं कि जिनसे गुनाह मिट जाते हैं। कई अजकार ऐसे हमें बताए गए कि उनकी वजह से इंसान उस गुनाह जो गुनाह कर बैठा है उससे पाक हो जाता है। जैसे नेक लोगों की मजलिस में बैठ के जिक्र अजकार करने से भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हमने रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं, सुनी हैं। हमारा जो आज की नेकी का प्रोग्राम होता है उसमें आपने सुनी होंगी कि जो इंसान की बुराइयों को मिटाने वाले अमल हैं। ठीक है, एक इंसान अपने किसी मुसलमान भाई से कोई तकलीफ दूर कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से भी उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो ये सारी नेकियां ही है ना, इन नेकियों से उसके गुनाह मिटते जा रहे हैं। किसी तंग दस्त है उसकी उसको आसानी दे देना, वो किसी ने कर्ज लिया हुआ उसकी कर्ज को में आसानी दे देना उसको, कर्ज को या माफ कर देना या आसानी देना, इससे भी गुनाह मिटते हैं। तो इसलिए अच्छा हाँ, उमरा करने से, हज करने से भी, इससे भी एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान के भी गुनाह माफ होते हैं। तो ये बहुत सारे अमल है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि नमाज एक अव्वलीन चीज है जिससे कि आप अपने गुनाहों को मिटा सकती हैं, इजी है। सदका करने से भी अल्लाह ताला का गजब जो है वो ठंडा हो जाता है। तो हम नेकियां भरपूर तौर पे ये सोच के भी करते जाएंगे, अल्लाह ताला इस मेरी नेकी वजह से अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देना। तो दालिका जिक्र अल ज़ाकिरीन, ये है एक नसीहत जिक्र करने वालों के लिए, यानी जो नसीहत पकड़ने वाले हैं उनके लिए बड़ी नसीहत है कि वो अपने गुनाहों को मिटा सकते हैं इस दुनिया में नेकियां कर करके। वसबिर, और सबर कीजिए, फ इन अल्लाह ला युदी अजर मुहसिनीन, आप ए नबी सबर करें। सबर का भी जो है ना वही, यानी माना एक तरह से समझ लें जैसे इस्तकामत का है, कि सबर भी क्या है। मैंने आपको बताया था कि इताअत में भी सबर होता है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी भी सबर के बगैर नहीं हो सकती, सबर होगा। सबर क्या होता है, मतलब क्या है सबर का? सबर का मतलब होता है रोक लेना अपने आप को, डट जाना भी सबर। रोक लेना मतलब किस चीज से रोक लेना, यानी किसी भी हालात में जो एक नेचुरल रिएक्शन आता है और वो नेचुरल रिएक्शन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ है ना, वो फितरी तौर पे जो इंसान के अंदर से उठता है, वो अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है तो उसको रोक लेना। समझ आए? मैंने जो रोक लेना कहा ना, तो अब आप सोच रहे हो किस चीज से रोक लेना, तो उस नेचुरल रिएक्शन को, यानी जैसे आप खुशी है, खुशी में आपका दिल कर रहा है कि आप नाचती भी बाहर निकल जाए, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया, नहीं, अल्लाह ताला की नाराजगी के ये सबब बनने वाली बात है, ये कैसे मैं कर सकती हूँ। इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि अल्लाह नाराज हो जाए, ये सबर है। फिर आपके ऊपर कोई, अल्लाह माफ करे, कोई गम की बात आती है, तो अब वो गम के अंदर दिल करता है कि कपड़े फाड़ दें और चीखना शुरू कर दें और मातम करें, लेकिन उस वक्त आप कहते हैं नहीं, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म ये नहीं है, मैं अपने आप को रोकती हूँ, ये सबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें बाज सबर का भी नहीं ना पता ये तो हम फिर सबर करें तो करें कैसे। इसी तरह हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जम जाना भी सबर है, ये अपने आप आपने अपने आप को रोक लिया उसके ऊपर, इस्तकामत जो है ना ये भी सबर है, आप सबर से चलते रहे। तो अभी पहले बात आई नमाज की, अब यहाँ पे सबर की बात आई, और पहले हम पढ़ चुके हैं वस्ताइनु बिस्सबरी वस्सला, आप मदद मांगिए, सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, मदद मांगे सबर से और नमाज से। यानी जब आपको तंग करें लोगों की बातें तो आप सबर और नमाज से मदद मांगिए। इससे मदद चाहें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला की रहमतें आती हैं, इससे अल्लाह की मदद आती है, रहमत का नुजूल होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को भी यही ताकीद की गई, सबर। अब मुसीबतों के दिन है तो उन पे भी सबर, फितनों का वक्त है तो उसमें भी सबर, यही वो नेकी है जिसका अजर अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा जो सबर करने वाले होंगे। अब फितनों के हालात हैं, आप देखें फितने कितने हैं। अब आप अगर फितनों का साथ नहीं देते तो आप बुरे बनते, तो उस वक्त में भी सबर कि नहीं मैंने, मुझे ये काम नहीं करने। तो अल्लाह ताला मोहसिनीन का सबर जाया नहीं करता, अजर जाया नहीं करता। तो मोहसिन कौन है यहां पे, यानी मोहसिन वो इंसान है जो सबर करने वाला है, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को आगे रखता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, गम की हो, खुशी की हो, कैसी भी। और मोहसिन असल में उसको कहते हैं जो हर दिन अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करता है, एक्सीलेंस के लेवल पे पहुंचने के लिए मुसलसल मेहनत करता रहता है। ये नहीं कि जो कल था बस मैंने पढ़ लिया, मैं जैसी हूं बस वैसे ही चलती जाऊं, नहीं, बेटर से बेटर अपने आप को आगे से आगे बेहतर। देखिए आप पैसा कमाने लगते हैं, आपने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, उसके बाद आराम से क्यों नहीं बैठ जाते, अब तो सिर्फ रोटी खानी है ना, तो रोटी के तो इतने पैसे नहीं है, घर चलाना है बस। लेकिन फिर भी आप कहते हैं खूब से खूब तर की तलाश, जिसको कहते हैं कि आप उससे ज्यादा, अब उससे ज्यादा, अब इससे ज्यादा हो जाए। लेकिन नेकी में क्यों नहीं ऐसे कि हम कहें कि हमने मोहसिन बनना है, यानी हम एक लेवल पे आ जाए ना, इससे बढ़ के आगे दूसरा, फिर उससे बढ़ के आगे तीसरा, हम खूब से खूब तर की तलाश में लगे रहें जब तक कि हमें मौत नहीं आ जाती, एक कोशिश या एक मेहनत के ऊपर आराम से ना बैठ जाए। फलाउला कैना मिनल कुरूनी मिन कब्लिकुम। अब ये बात, एक बात, अगर कोई कौम अपने आप को बचाना चाहती है अजाबों से तो वो क्या करे, ये दो आयतें हमें ये बता रही। फलाउला कैना मिनल कुरूनी मिन कब्लिकुम उलू बकियतिन, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जो कौमें गुजरी पहले, आपसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उनमें कोई समझ वाले होते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? समझ वाले होते क्या करते, वो समझ वाले, वो समझ वाले कोई ऐसे लोग होते जो यनहौना अनिल फसादी फिल अर्ध, जो रोकते लोगों को जमीन में फसाद से। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इन कौमों के अंदर, आपने देखा वो लूत अलैहि सलाम की कौम की सारी कौम ही बाहर आके खड़ी हो गई, और भी जो लोग थे, शोएब अलैहि सलाम की कौम है या फिरौन की कौम है, इनके लोग सारे के सारे ऐसे थे कि इनमें से कोई नहीं था कि जो समझदार होता, लोगों को फसाद से रोकता, इल्ला कलीला, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया बहुत ही थोड़े, बहुत ही थोड़े कोई होते थे कि जो कहीं लोगों को कोई बात बताने वाले होते, अंबिया होते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई लोगों के अंदर ऐसी तहरीक हो, कोई ऐसी रेवोल्यूशन हो, लोग कहें कि नहीं ये चीज गलत है, हम इस चीज को नहीं मानते और इसको रुकना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ पहली उम्मतों में, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो लोग रुकावट बन जाते बुराइयों के आगे, डट जाते उनके आगे। तो ये कौमों के जो किस्से आपने सुन लिए, हालात सुन लिए, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि इनमें कोई लोग होते, कोई भी नहीं समझ वाला था जो बिगाड़ को रोकते। इसका मतलब है अगर आगे अगली आयत में इसका कंक्लूजन है कि अगर ऐसे हों तो अल्लाह ताला फिर नहीं उनको अजाब देता, तो क्यों नहीं हुए ऐसे लोग ये कहा जा रहा है। इसे पता चलता है कि अगर कोई चाहता है कि कौम के ऊपर अजाब ना आए तो उसके अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो लोगों को बाज करें, जो लोगों को बुराई से रोकें, जो उठ खड़े हों बुराई के खिलाफ। कलील जो आटे में नमक के बराबर है उनसे भी काम नहीं चलता अगर पूरा का पूरा माशरा एक तरफ चल रहा है, तो ये एक मूवमेंट के तौर पे होना चाहिए। मिम्मन अंजैना मिन्हुम, उनमें से जिनको हमने निजात दे दी, उनमें यानी कलील वो थे जिनको हमने फिर निजात दे दी, वो उनको अल्लाह ताला ने निकाल लिया। तो ये काम ही होता है कि कोई लोग बुराइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करे। अक्सरियत जब देखती है कि सब कर रहे हैं तो कहते करने दो, क्या हो गया, हम क्या करें, हम क्यों बुरे बने, तो हम क्यों बुरे बने, ना बुरे बने तो सारे ही डूब जाएंगे। जैसे मैंने आपको कश्ती की मिसाल पहले भी दी हुई है कि वो अगर नहीं आप रोकोगे कि जो कश्ती में सुराख कर रहे हैं तो पूरी कश्ती डूब जाएगी। अब वो जो दूसरे हैं वो कहे हमें क्या, तो करते रहे सुराख, हमें तो नहीं ना कुछ कह रहे, तो ठीक है वो करते रहेंगे, तो उसके बाद सब जाना फिर नीचे, ठीक है। तो वो क्यों नहीं ऐसे लोग, वत्तबाल्लदीन ज़लमू उत्रिफू फी, और पैरवी की उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया उनकी जो दौलत दिए गए उसमें, यानी दौलतमंदों की पैरवी की या दौलत के जो सामान उनको दिए गए उसके पैरवी करते रहे, आसाइशों के पीछे चलते रहे, पैसे के पीछे चलते रहे। यानी जालिम लोग कौन है, जो जो ऐश की चीजें हैं ना, लग्जरीज है, खुशहालियां हैं, जो ऐसी चीजें हैं उनके पीछे पड़े रहे। मुतरफीन मैंने आपको बताया ना, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग, खुशहाल लोग, साहिब इक्तदार लोग, जिनके पास लग्जरीज है, वो लोग, तो पूरी कौम ही इनके पीछे लग रही रही, ऐसी चीजों के और ऐसे लोगों के, कि भाई हम भी अपने माल असबाब बढ़ाएं, हम भी ऐश के सामान और बढ़ाएं और बढ़ाएं, जितने हमारे पास है उससे भी ज्यादा करें, हमारा पैसा ज्यादा बढ़ता रहे, पैसे के चक्रों में पड़े रहे। जिस कौम में ऐसे लोग कि वो इन्हीं चीजों की दौड़ में पड़े हुए हैं, दीन तो किसी की प्रायोरिटी है नहीं, अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं टूटते फिरे, हमें क्या, वो एक ही तरफ लगे हुए, जो दौलत दिए गए उसमें ही पड़े हुए हैं। तो फिर फरमाया वकानु मुजरिमीन, वो मुजरिम है, वो लोग मुजरिम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बजाय इसके के दूसरों को रोकते, इनके अंदर मुसलहीन होते लोग, एक दुनिया की ऐशो आराम की चीजों के अंदर, उसके अंदर अपने आप को मशगूल किया हुआ है, ऐसे ही लोगों को फॉलो करते हैं जो ये काम, जो इन चीजों के अंदर है। और आज आप देख लें कि यही हाल है, आज किसको फॉलो किया जाता है, आज किसको अपना माना जाता है आइडियल, किसको बनाया जाता है। और फिर उसके बाद उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम वही बुराइयां जो वो करते हैं उन्हीं को हम अच्छा कहने लगते हैं, उन्हीं को भलाई कहने लगते हैं, बुराई बुराई ही नहीं लगती, रोकेगा कौन, जब बुराई बुराई नहीं लगती तो कौन रोकेगा। तो इसलिए एक कौम के अंदर जब ऐसे लोग हों तो फिर वो उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर देखे उन कौमों के ऊपर अजाब आए। इसीलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना रब्बुका लियुहलिकुल कुरा बिज़ुल्मिन, तेरा रब ऐसा नहीं है कि वो लोगों को तबाह कर दे, बस्तियों को तबाह कर दे जुल्म के साथ, कि वो तो बेचारे बड़े इनोसेंट थे और ऐसे ही उनको तबाह कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि वह अहलुहा मुस्लिमून, और उसके रहने वाले तो इसलाह करने वाले, और अल्लाह ताला उनको तबाह कर दे, ऐसा नहीं होता। जरूर ऐसा होता है कि उनके अंदर कोई मुसले नहीं रह गया होता। इसका मतलब हर एक कौम में मुसले होने जरूरी हैं, ऐसे लोग होने जरूरी हैं जो खड़े हों बुराइयों के खिलाफ, जो बोले, आवाज उठाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोक लो, जुबान से नहीं रोक सकते दिल में ही बुरा समझ लो। ये सबसे छोटा दर्जा है, सबसे अदना दर्जा है, लेकिन है, अगर दिल में भी बुरा नहीं समझते आप किसी बुराई को तो फिर तो ईमान ही नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग जब किसी जालिम को देखें और उसके हाथों को ना पकड़े, जबकि वो कुदरत रखते हैं ना, तो फिर भी उसके हाथों को ना पकड़े तो करीब है कि अल्लाह ताला उन सब पे अपनी तरफ से अजाब नाजिल फरमा दे। ये जो हम कहते हैं ना, हमें क्या, मैं क्यों बुरी बनूं, आप उसको नहीं कहते ना कुछ, मैं क्यों बुरी बनूं, तो फिर वो सारों के ऊपर ही अजाब आ जाता है। अल्लाह ताला किसी बस्ती को तबाह नहीं करता उसकी के उसके रहने वाले शिर्क करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी बस्ती को तबाह कर देता है जब उसके रहने वाले जुल्म करते हैं। जुल्म के साथ अल्लाह ताला किसी बस्ती को मोहलत नहीं देता, फिर उसको उनकी मोहलत खत्म हो जाती है। जो कुफर करते हैं उनका तो अंजाम है ही कि कयामत के दिन उनके लिए जहन्नम है। लेकिन जो लोग इस चीज के अंदर पड़ गए हैं कि जुल्म कर रहे हैं वो बाकी गुनाहों के कामों के अंदर मुलव्वस हो गए, तो अल्लाह ताला फिर जुल्म के साथ नहीं उनको, जिसको हम जुल्म कहते हैं अपनी जुबान में। अच्छा, यहां पर जुल्म के तीन माने हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जुल्म का वही माना शिर्क लिया जाए, तो फिर तो ये है कि अल्लाह ताला किसी बस्ती के ऊपर को हलाक नहीं करता कि वो शिर्क करने वाले हैं, जब उनके अंदर इसलाह करने वाले मौजूद हैं, अगर इसलाह का अमल जारी है, वो लोग इनके इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उठे हुए हैं, तो अल्लाह उनको हलाक नहीं करता। आप देख लें पिछली कौमों के अंदर भी कुछ ना कुछ और सिफात थी जिसकी वजह से वो हलाक हुए, सिर्फ शिर्क की वजह से नहीं हुए। शिर्क तो है, लेकिन उसके बाद वो फिर कौम लूत जो अमल करती थी वो फिर कोई हेरा फेरी उसमें करते थे, नाप तोल में, कोई पैगंबरों को सताते थे और पैगंबरों के साथ उन्होंने इतना जुल्म किया कि उनकी जान के दर पे हो गए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाले थे। तो एक तो ये माना है। दूसरा माना जुल्म का कि अल्लाह जुल्म के साथ किसी बस्ती को तबाह नहीं करता, यानी ना हक ही तबाह कर दे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौम का ऐसे ही बस अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया किसी को, जबकि उसके अंदर इस्लाह का अमल है और लोग हैं वहां पे, तो जब लोग होते हैं वहां पे तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं उनको तबाह कर देता। तीसरा माना यह कि इनफरादी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला तबाह नहीं करता जब तक के लोग ओवरऑल ही ना ऐसी करप्शन के अंदर मुब्तला हो जाए, समझ आए। इंडिविजुअली कोई कमरों के अंदर बंद होके कोई गुनाह का काम कर रहा है, छुप छुपा के कोई इंडिविजुअल करता है, उसकी वजह से नहीं बस्तियां तबाह होती, कौमें तबाह होती हैं जब उनके ओवरऑल उनके अंदर ऐसी माशर्ती बुराइयां आ जाती हैं और उनके अंदर कोई कहने वाला नहीं है, बस वो जो मर्जी करें, कोई मुसले नहीं है, कोई नहीं उठता उनको बताने के लिए, उनको कहने के लिए, इसलाह का अमल है ही नहीं वहां पे। इससे हमें पता चलता है कि कितना जरूरी है कि इसलाह का अमल चलता रहे, बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए कि हम अपनी भी इसलाह करें, अपने घर वालों की भी इसलाह करते रहे, अपने इर्द गिर्द वालों की भी इसलाह करते रहे, बताते रहे, बुराइयों पर टोकते रहे, रोकते रहे, कोशिश करते रहे कि यार इस अमल को जारी रखें, अपनी कोशिशें बंद नहीं करनी कि अब क्या फायदा, मैंने इतनी दफा कह दिया छोड़ो। याद रखें जब तक मुस्लिहीन होंगे किसी कौम पे अल्लाह उस कौम को तबाह नहीं करेगा। अगर फसाद बढ़ रहा है ना तो हमारी कोशिशें भी बढ़नी चाहिए, ये ना सोचे ये सबका प्राइवेट मामला है, जो मर्जी करें उनका प्राइवेट मामला है, ये मेरा प्राइवेट मामला है, नहीं। अगर आपने प्राइवेट मामले कह कह के छोड़ दिया तो किसी की भी खैर नहीं है फिर। और इसमें बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोग कहते हैं अपने गिरेबान में जाके देखो, तुम अपना पहले सोचो, हमें क्यों कहने आ गए, बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन क्या अंबिया ने नहीं बातें सुनी, वो हमसे बहुत कई करोड़ों गुना बेहतर इंसान है, हमारी क्या हैसियत है अगर हमें कोई बात सुना दे तो, हमारी इज्जत पे इतना बड़ा हर्फ है कि क्यों क्यों हमें किसी ने कुछ कह दिया। वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, सब तौहीद पे होते, वला यजालुना मुख्तलिफीन, और हमेशा रहेंगे इख्तलाफ करने वाले। लेकिन अल्लाह ने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर अल्लाह ताला सबको जबरदस्ती मुसलमान ही बना देता तो इम्तिहान क्या होना था। अल्लाह ताला ने तो आजादी दी है ना चूज करने की, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, तुम चाहे शुक्रगुजार बनो चाहे कुफर करो। तो ये दुनिया में इख्तलाफ रहना है और रहेगा, कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा, लेकिन ये ना समझना, यहाँ पे अल्लाह ताला की ताकत बताई जा रही है, ये ना समझना कि अल्लाह ताला उनको सीधा कर नहीं सकता। अल्लाह उनको सीधा कर सकता है और अल्लाह उनको जबरदस्ती मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर इम्तिहान नहीं होगा कुछ भी, फिर इम्तिहान खत्म है ना। इम्तिहान तो तभी है जब आपके पास पावर ऑफ चॉइस है, आपके पास एक चॉइस है कि मैं चाहूं तो मैं ये करूं, चाहूं तो नहीं करूं, तो ही इम्तिहान है ना। मैं गलत लिखूं सही लिखूं अपने पर्चे में, तभी तो इम्तिहान है। अगर मेरा सारा ही जबरदस्ती कोई सही लिखवा दे तो मेरा इम्तिहान क्या है। अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया है, इसीलिए हमेशा कोई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं मानेंगे, इख्तलाफ करेंगे हक के बारे में, इल्ला मन रहिमा रब्बक, सिवाय उसके जिसके ऊपर अल्लाह ताला ही रहम कर दे और उसको हिदायत दे दे, वरना कोई लोग होंगे जो इख्तलाफ करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी मुश्किल आयतें हैं, आप इनको तफसीर में पढ़ेंगी ना आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आप लोग गौर से सुने इस बात को, क्या वजह है कि कौन सी चीज है ऐसी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उम्मतों को तबाही से हलाक होने से बचा लेता है। आपको पता होना चाहिए कि पिछली दो आयतें इसकी चीज के ऊपर कौन सी चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं कि इनके जरिए हम मदद मांग सकते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल होता है, वो कौन सी चीजें, सबर क्या चीज होती है, इस्तकामत क्या होती है, ये आपको समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे लोग इख्तलाफ करने वाले होंगे, क्या मतलब इल्ला मर रहिमा रब्बुक, क्या मतलब कि जिसके ऊपर अल्लाह रहम करे, यानी लोग इख्तलाफ करेंगे अगर जिसके ऊपर अल्लाह रहम कर दे और उसको ही सीधा रास्ता दिखा दे तो ठीक है, वरना इंसान बहक जाते, अल्लाह ताला तौफीक दे दे उसको। वलिदालिक खलकहुम, और इसी तरह उसने पैदा किया उनको, यानी उसने इसी तरह पैदा किया कि लोग चाहें तो ये इख्तियार करें, चाहें तो दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने जो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है ना, इसी तरह अल्लाह ने उनको पैदा किया, तो वो इख्तलाफ तो करेंगे, और इख्तलाफ में से कोई है जिसके ऊपर अल्लाह रहम फरमा दे और उसको हिदायत दे दे तो उसको हिदायत मिल जाती। तो इस तरह ही अल्लाह ने इनको पैदा किया है फ्रीडम के साथ, और फिर जरूर ऐसे लोग होंगे जो उल्टे तरीके इख्तियार करेंगे, जो गलत रास्तों पे जाएंगे, जो गुमराही के ऊपर जाएंगे, तो वह तमत कली मत रबी कल अम अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्ना से अजमाई। अल्लाह ताला की बात पूरी हो गई, कोई लोग जरूर होंगे इख्तलाफ करने वाले, तो उनसे अल्लाह ताला फिर भर देगा जहन्नुम को। अल्लाह ताला ने उस वक्त ही जब शैतान को निकाला था आसमानों से तो उस वक्त ही फरमा दिया था अमला अन्ना जहन्नम, मैं भर दूंगा जहन्नुम को तुझसे और जो तेरी पैरवी करे उनसे, जो तेरे पीछे चलेंगे उनसे भी भर दूंगा जहन्नुम को। तो अल्लाह ताला की बात पूरी हो गई, जो लोग इख्तलाफ करेंगे, देखें जो मोमिन है ना, यकीन करें वो जिंदगी ऐसी गुजारता है कि उसके पास तो सब ऐसे वो रहता है जैसे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, जैसे मेरे पास कोई चॉइस नहीं। जी हाँ, क्योंकि इसीलिए तो उसके लिए दुनिया कैद खाना है ना, वो कैद में है समझ लें ऐसे, वो यहाँ पे मतलब अपनी चॉइस से नहीं कर सकता जो वो करना चाहे, उसने बंदी भी जिंदगी गुजारनी होती है। और समझदार इंसान यही होता है जो कहता है नहीं मैं आजाद हूं, मैं जो चाहूं करूं, मैंने ये भी नहीं मानना, मैंने वो भी नहीं मानना, मेरी मर्जी, तो फिर वो रास्ते इख्तियार कर लेते हैं फिर उनके लिए जहन्नम। तो एक इंसान जो ये कहे ना कि मेरे लिए जहन्नम इज नो चॉइस, नो चॉइस, वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही, क्योंकि वहां पे दो जगह है जहन्नम या जन्नत, मैंने एक ही रास्ते पे जाना जन्नत में। आप देखिए आजादी इसको मिली भी है लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नहीं करता उस आजादी को। जैसे मसलन है आप यहां पे बैठे हैं तो आपको कोई कहे जिसने जाना है वो जाए तो सारे उठ के चले जाएंगे, लेकिन आपको अगर कोई कहे जिसने जाना है जाए लेकिन बाहर कोई गन लेके खड़ा हुआ जो जाएगा उसको शूट कर देगा, तो कितने लोग उठ के बाहर जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? आपको किसी ने रोका? आपको तो कहा है जिसने जाना है जाए, आप जाएं, क्यों रुक गए फिर? आपको पता है कि अगर मैं गई तो वहां पे फायर चल जाएगा तो आप नहीं जाते। इसी तरह आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप चाहे तो उल्टे रास्ते भी जाए, चाहे तो सीधे पे जाए, लेकिन जिसने ये सोच लिया ना कि मैं इस रास्ते पे गई तो वहां पे जहन्नुम है इसके आगे, वो नहीं जाएगा, वो नहीं वो रास्ता इख्तियार करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे क्या है, वो अपना इख्तियार ही गिव अप कर देता है, वो कहता मुझे नहीं है, मैंने ये इख्तियार लेना ही नहीं, मुझे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है ये रास्ता अल्लाह की फरमाबरदारी का, बस नो अदर वे, क्योंकि दूसरा वे एक है वो जहन्नम की तरफ जाता है। अब आप कहेंगे नहीं इसके पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार है, आजादी है, जो मर्जी करे कर ले, जो मर्जी चाहे, मगर उसने अपने आप को खुद बांध लिया। फिर लोग जितना मर्जी उसको कहे तू आजाद है तू कर ले, ये जिंदगी तो एक दफा मिली है, जो चाहे करो, फिर दोबारा थोड़ी मिलनी है, वो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता ये, वो कहते हैं तुम बोलो, ये बोल सकते हो तुम, तुम्हारी कोई जुबान ने तो जुबान को किसी ने पकड़ा थोड़ी है। वो कहता मैं नहीं बोल सकता, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, मैं कैसे बोलूं। वो कहते हैं चलो वहां पे चलो, तुम्हारी टांगे थोड़ी किसी ने बांधी हुई। कहता नहीं मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं नहीं उठ सकता, इसलिए वहां जाना मेरे रब को कबूल नहीं। तो इसलिए वो अपने आप को खुद बेख्तियार कर देता है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल ये मिसाल दी कि बाहर जाना सबकी चॉइस है, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही इख्तियार खत्म कर लिया। उसको पता है कि बाहर जाऊंगा तो वहां पे गोली है, जिसको जिसको पता है ना यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे जहन्नुम है, वो कैसे जाएगा? वो फिर नहीं कहता नहीं मेरी मर्जी, मैं तो खुद चलूंगी, मेरा दिल करेगा मैं उस रास्ते पे जाऊंगी। और हर एक को बयान करते हैं, हर एक की बयान करते हैं हम आप पर, मिन अंबा रसूल, रसूल की अंबा में से, रसूल की खबरों में से, रसूलों की खबरों में से हम आपके ऊपर हर एक की बयान करते हैं। किस लिए? मानुसबित भी फुआदक, जो हम मजबूत करते हैं साथ इसके आपके दिल को, कि हम इसलिए ये बयान करते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो, ताकि आप सा आपको ये हो कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये पिछले अंबिया के साथ भी ऐसा ही हुआ, और फिर अंजामे कार क्या हुआ। तो आपके दिल को इसके ऊपर मुतमईन करने के लिए, और फिर आप सल्लल्लाहु के बाद जितने भी इस काम को करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए, जो भी अल्लाह के दीन की दावत दें, उन सब के लिए इन किस्सों के अंदर मैसेजेस हैं। वजा कफी हादिहिल हक, और आ गया आपके पास इसमें हक, इसमें आपके आपके पास इस कुरान में, इस किताब में हक आया है, इन किस्सों में भी हक है। वह मोइज़त व ज़िक्रा लिल्मुमिनीन, और नसीहत और याद दहानी ईमान वालों के लिए। ईमान वाले हैं उनको उनकी इंडिविजुअल लाइफ में भी सबक मिलेगा, और अगर वो दावत का कोई काम करता है तो उसके लिए भी सबक है इसमें, दिलों को नरम करने वाली बातें, ठीक है, इन कसस में। लेकिन आप कितनी चीजें सीखते हैं, कैसे कैसे अंबिया ने सख्तियां झेली, कैसे उन्होंने मुखालफतों का सामना किया, फिर भी कैसे वो डटे रहे, ईमान वाले कैसे डटे रहे, फिर उनका अंजाम कैसा हुआ, फिर कौन इनमें कामयाब नजर आता है, कौन इनमें नाकाम नजर आता है, और क्यों छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी उनके ऊपर, यानी ऐसी उनके हद तक, यहां तक कि कत्ल तक के इरादे कर लिए कौमों ने, इससे क्या बढ़ के बात हो सकती है? जुबानों से ही नहीं, फिजिकल भी हो गए थे, तो तब भी उन लोगों ने कैसी साबित कदमी दिखाई? तो ईमान वाले के लिए तो इसमें साबित कदमी के मैसेजेस है, इसमें रोशनी है उसके लिए। वकुल लिल्लदीन ला युमिनून, और कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते, एमलू अला मकानतिकुम, तुम अमल करते रहो अपनी जगह, इन्ना आमिलून, बेशक हम अमल करने वाले हैं, हम अपना अमल करते रहते हैं, तुम ठीक है तुम अपना अमल करते रहो। ये जैसे आपको बताया लास्ट वर्डिक्ट है, बस अब ठीक है, जितनी तुमने दुश्मनी करनी है करते रहो, कर गुजरो जो करना, इतनी बातों के बाद भी अगर तुम ईमान नहीं लेकर आते तो करते रहो जो करना है तुम्हें, वंतजीर, और इंतजार करो किस चीज का, अंजाम का, नतीजे का, रिजल्ट का, इन्ना मुंतजीर, हम भी इंतजार करते हैं, पता चल जाएगा कि कौन है जो सही है और कौन है जो गलत है, इतनी बातों में वो झगड़ते थे, खुद पता चल जाएगा। लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए गैब आसमानों और जमीन का, उसको पता है, ये भी गैब की बातें हैं कि किस कौम का अंजाम कब आता है, कब उनके ऊपर अजाब का फैसला आ जाए, या कब उनके ऊपर कयामत आ जाए, कब उनके साथ क्या हो जाए, ये भी गैब की खबरें हैं, ये अल्लाह ताला को ही पता है। वो कहते थे ना मैं लेकर आए अजाब, तो अल्लाह को पता है गैब, और लिल्लाही शुरू में लेकर आए अल्लाह ताला, और बाद में आ सकता था, गैब उस्समावाती वल अर्दी लिल्ला भी हो सकता था, वो बिल्कुल करेक्ट जुमला, गैब आसमान और जमीन का अल्लाह के पास है, लेकिन लिल्लाही शुरू में लाने से हसर आ गया, यानी सिर्फ अल्लाह के पास है गैब आसमान और जमीन का, कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जानता आगे क्या होगा किसके साथ। वह इलैहि युरजउल अम्र कुल्लुहु, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं मामलात सारे के सारे, यानी सारे मामलात उसके हाथ में हैं, उसके हाथ में है, उसका फैसला है, फैसले का इख्तियार उसका है, तो ये भी अल्लाह ही को पता है कि किस कौम के साथ क्या मामला करना है, उनका कब फैसला करना है। तो हर किस्म के काम आपके, चाहे अब उन कौमों से हट के भी हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमारे चाहे रिश्ते नातों के काम हो, काम कारोबार हो, सफर हो, जीना मरना है हमारा, हमारी शादी ब्याह है, हमारे इम्तिहान है, पास होना फेल होना है, हमारा कहीं जाना है, उठना बैठना है, हमने किधर रहना है, हर किस्म के मामलात वो अल्लाह ही के हाथ में, युर्जाउल अम्रु, लौटाए जाते हैं उसकी तरफ सारे के सारे। फाबुद हो तो उसी की इबादत कीजिए, व तवक्कल अलैहि, और उसके ऊपर भरोसा करें, हालात कितने भी खराब हो जाएं आपका भरोसा अपने रब पे रहना चाहिए, लोग माने या ना माने। वमा रब्बु कभी गाफिल अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला इस बात से तेरा रब गाफिल नहीं है जो भी तुम अमल करते हो, जो भी तुम काम कर लो, दिल में, जाहिर में, हाथ से करो, जुबान से करो, पैर से करो, अल्लाह ताला सब जानता है, वो उससे गाफिल नहीं है, उसको पता है कौन किस पे जुल्म कर रहा है, सो पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, फलां जगह क्या हो रहा है, वो गाफिल नहीं है, उसको मालूम है किसकी मदद कब करनी है और जालिम का हाथ कब पकड़ना है, तो किसके साथ क्या करना। दुनिया जहान के मामलात कुल्लू में सब मामले आ गए, किसी मामले से वो गाफिल नहीं है, वो देख रहा है, सुन रहा है, बाखबर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमसे ये पढ़ना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जो इस सूरत में मैसेजेस हैं और जो सबक हैं वो हमें हमारी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इसका अमल हमारे लिए आसान फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الود المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما